नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से लड़ रहा है और वर्तमान में सरकार ने 18+ के युवाओं को वैक्सीन लगाने के फैसला किया गया है और कई लोगों की यह मांग है कि कोविड वैक्सीन हो या कोरोना महामारी में राशन वितरण हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का निजी अस्पतालों में उपयोग हो, इसको लेकर हमने लोगों की राय ली और वर्तमान में आज हमारे साथ में यूथ ऑफ सोसर के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता भीमराव जी बड़वाई जुड़े हुए हैं। भीमराव जी, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
जी, धन्यवाद जी। सभी
बस
मोबाइल वाणी के सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार
सर,
जी।
सर जिस तरीके से पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है तो कई लोगों ने यह मांग की है कि 18+ के युवाओं को जो वैक्सीन लग रही है तो सेंटर बढ़ाने की मांग की है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इसको?
जी बिल्कुल जायज है ये मांग। इस प्रकार से वर्तमान में कोरोना महामारी से लोग ग्रसित हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में कोविड सेंटर बढ़ाने की, जो वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की जो मांग है आपकी और हमारे तरफ से भी आपका मतलब हमको सहयोग है। हम अपने तरफ से इस बात को रखने के लिए पूरा जोर देंगे कि 18+ की युवाओं के लिए वैक्सीन सेंटर बढ़ाया जाए। गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर जितनी व्यवस्था हो सके ये सेंटर बढ़ाना चाहिए।
सर, वर्तमान में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारी हो और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वैक्सीन पंजीयन करने में समस्या आ रही है, तो इसके लिए क्या कदम उठाया जाए ताकि इन लोगों की समस्याएं भी दूर हो और समाधान भी हो सके?
मोबाइल वाणी से मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, जिस किसी को भी अपना रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही हो या उसे नहीं समझता हो तो ऐसे लोग हमें सकते हैं। यूथ ऑफ सोसर सामाजिक क्षेत्र में आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। आप चाहे रजिस्ट्रेशन का कार्य बोलो या अन्य जो भी सेवा कार्य हमसे हो पाएगा हम बिल्कुल करेंगे। और जिस भी प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर अगर समस्या होंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास में अवेलेबल है, 4 सिलेंडर अवेलेबल है हमारे पास में। जिस भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता होंगी हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
सर, ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रामक जानकारी है उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या
जी,
किए जाने चाहिए?
जो भ्रामक जानकारियां है, भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है समाज के अंदर, गांव के अंदर, हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं वैक्सीन को लेकर जो बात होती है हम उनको यही समझाते हैं कि वैक्सीन ही हमारे लिए रामबाण इलाज है। कोविड इस महामारी में वैक्सीन लगाना ही हमारे लिए बचाव है। जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है ये वो लोग है जो समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व को समझते ही नहीं। और जो वो व्यक्ति है जो राष्ट्रद्रोही है, विरोधी है, मैं ऐसे ऐसी भाषा का यूज करूंगा कि वो जब इस विषय में भ्रामक जानकारी फैलाएंगे तो राष्ट्र विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी सोच है। हमें एक सजग नागरिक की भूमिका निभाते हुए समाज के अंदर ये भ्रामक जानकारी जो लोग देते हैं उनको रोकना भी पड़ेगा, ये हमारा ही कर्तव्य है। और हमारे हमसे हमसे ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर हमें मिलते हैं या फिर जिससे हमारी चर्चा होती है हम बिल्कुल उनको रोकते हैं, टोकते हैं, उनको सही जानकारी देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये जो व्यवस्थाएं है ये सरकार ने हमारे लिए बनाई गई है, आज फ्री में आपको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो भाई वैक्सीन लगाना जरूरी है, कोरोना के इस काल में हमें अगर जीना है तो वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। और हमें इस जानकारी को फैलाना नहीं पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य है।
जी सर, बीते दिनों मोबाइल वाणी पर कई लोगों ने राय दी थी कि आयुष्मान कार्ड को निजी अस्पतालों में यूज हो और बीते कुछ दिनों पहले ही सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं?
नहीं, अच्छी पहल है और आयुष्मान कार्ड कोविड में यूज हो रहा है, अच्छी बात है और निजी अस्पतालों में इसका उपयोग होना चाहिए और उन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उस गरीब का इलाज करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए।
जी, सर, बीते दिनों मोबाइल वाने पर जिले के ब्लॉकों में कोविड सेंटर अस्पतालों में खुलने की मांग की गई थी। सर, वर्तमान में सिविल अस्पतालों में क्या स्थिति है?
वर्तमान में सिविल अस्पताल में बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है और व्यवस्था काफ़ी अच्छी व्यवस्था है जिला हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छिंदवाड़ा जिला है अभी काफ़ी बेहतर सुधार में है। और मतलब जिस प्रकार से पिछले दिनों से अपन गुजर के आए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अभी सिविल अस्पताल में या जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बेहतर है और धीरे 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 ये मतलब रिकवर हो जाएंगा सारी चीज़ें।
जी सर, करीबन 2 से 2.5 माह से जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर है उनकी आजीविका बड़ी प्रभावित हुई है। लेकिन सरकार ने जो राशन वितरण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां देखी जा रही है, तो गरीब लोगों को राशन उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने क्या पहल करनी चाहिए और इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए प्रशासन किस तरह के कदम उठाए?
जो गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा जो राशन की व्यवस्था की जा रही है या की गई है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ही जा मतलब ये पंचायत लेवल पर राशन को बांटना चाहिए या जो सही में गरीब है या जो मतलब जिनको राशन राशन नहीं मिल रहा है ऐसे व्यक्तियों को पंचायत लेवल पर सर्वे करना चाहिए, पंचायत के लोगों ने सर्वे करना चाहिए और उनको जिस जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था हो सके कर देना चाहिए। और दूसरी बात राशन को लेके जो जो बात है जो कुछ कुछ हद तक जो गवर्नमेंट ने फ्री दिया है वो सही बात है और उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं क्योंकि राशन की दुकान में जो राशन बांटने वाले लोग हैं वो गरीब को तवज्जो नहीं देते। मैंने जिस प्रकार से देखा है बाकी मैंने बात भी किया था उससे कि भैया आप लोग का खैरात बांट रहे हैं, भाई राशन अधिकार है उसका, वो गरीब का राशन अधिकार है आप दीजिए उनको। गवर्नमेंट बोल रही है 2 महीने का 3 महीने का फ्री देना, उसके बाद में अभी 5 महीने का फ्री देना है तो उसको दीजिए, उसका अधिकार है और उसको मिलना ही चाहिए। और जिस प्रकार से उसकी जो व्यवस्थाएं है वो जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अन्य जो समझदार लोग हैं उन उन युवाओं ने सामने आना चाहिए और उसका अधिकार दिलाने में उसकी मदद करना चाहिए। ये हमारा काम है, हमने सामने आके उसकी मदद करना चाहिए। और जो गड़बड़ियाँ हो रही है तो गड़बड़ियों के ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए हमें ही सामने आना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो गरीब का हक है, वो खैरात नहीं है, गरीब का हक है, राशन उसका हक है क्योंकि उस इस महामारी में वो बेचारा क्या करेगा। एक ही तो सहारा है गवर्नमेंट का, बेचारा खाली बैठा है, उस राशन पे उसका अधिकार है और उसे उसको मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे कि कहीं किसी प्रकार से गड़बड़ियाँ नहीं हो। हमारे साथी है जो दिनकर जी पातुर कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं इस विषय में, रामाकोना में उनने एक अच्छा अच्छा राशन के ऊपर में एक अच्छा काम किया है उनने। वहाँ पर जो भी धांधलियाँ गड़बड़ियाँ हो रही थी वो उस पर उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया और हम उनके साथ में हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी ये हो इस प्रकार से गड़बड़ियाँ होती है हमारा युवता सर और हम सब साथ में रहेंगे इस प्रकार से क्योंकि उसका अधिकार है, राशन तो उसका अधिकार है गरीब का।
जी सर, वर्तमान में आपके जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या स्थिति है?
वर्तमान में जो संक्रमण है वो थोड़ा कम हो चुका है और अभी जिस प्रकार से हमें ज्ञात है या हमें जानकारी की मिली है या मिलती है अभी सिविल अस्पताल में, जिला अस्पताल में बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, स्थिति सुधार में है। और इस दिशा में मैं प्रशासन का बहुत मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने इस रोकथाम के लिए अच्छे प्रयास किए, ये युद्ध स्तर पे काम हुआ है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस या अन्य जो भी सामाजिक कार्यकर्ता जिनने अपना अच्छा सहयोग दिया है, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा, देना चाहूंगा कि उन व्यक्तियों के बदौलत ही अपने जिले में अभी स्थिति नॉर्मल मतलब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है और ईश्वर ने चाहा तो सारा सभी सब बराबर हो जाएंगे।
जी सर, वर्तमान में 1-2 दिन पूर्व ही जिले में जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित था उन्हें ब्लड थ्रू देखे गए। सर को इनके इनके बचाव के लिए जो ऐसी बीमारियां ये महामारी में आ रही है इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही इनके क्या क्या लक्षण है?
सर मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
बीते दिनों यानी करीबन 2 दिन पूर्व जिले में कोरोना से एक मरीज जूझ रहा था और उनमें ब्लड फ्लू देखा गया है। तो इस बीमारी से क्या लक्षण है और इनसे किस तरह बचा जा सकते हैं?
बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाए गए जी।
जी
मैं योगेश जी बताना चाहूँगा कि इस लक्षणों के ऊपर में हमारे डॉक्टर्स ने ध्यान देना चाहिए, और ये विषय जो है ये स्वास्थ्य का विषय है, और हम चाहते हैं, हम निवेदन करना चाहेंगे प्रशासन से, कि डॉक्टर से निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार से महामारी में अगर बर्ड फ्लू या अन्य बीमारी आती है तो उस पर ध्यान दिया जाए और उसका उचित उपचार किया जाए, और जो पेशेंट को जानकारी या अभाव में होती है उनको जानकारी दिया जाए कि भाई इस प्रकार ये कोरोना में बर्ड फ्लू हुआ है और इसका इलाज इसी प्रकार से है, और हमें सावधानी से उस सारी चीजें करना चाहिए, और लोगों को भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी देना चाहिए कि इस कि भैया आपको इस प्रकार से बचाव करना चाहिए, और जो भी हो सके उन्हें अपने अपने हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए।
जी सर, वर्तमान में करीबन 1 से 1.5 साल से स्कूलें बंद हैं और बच्चे अपने घरों में हैं। सर, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे किस तरह अपने घर में रहकर प्रिपरेशन करें, पढ़ाई करें?
बच्चे अपने घरों में अपना जो कार्य है, जो पढ़ाई है, अपने घरों में ही रहकर किया जा सकता है और करना चाहिए। और दूसरी बात, अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अभिभावक ने अपने घरों में जो भी शिक्षा दे सकते हैं या जो व्यवस्थाएं हो सकती है मोहल्लों में, क्योंकि यहाँ मतलब कोविड नहीं है उस मोहल्ले में या स्थिति नॉर्मल है, तो ऐसी जगहों पर मोहल्ले के बच्चे मिलके पढ़ाई करना चाहिए, या जो पढ़ा सकता है निशुल्क, ऐसी व्यवस्था है वो मोहल्ले के लोगों ने करना चाहिए, 2 4 5 लोग मिलके ऐसा करना चाहिए, ताकि शिक्षा ही आवश्यक है। महामारी के कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन शिक्षा भी हमारे लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, तो वो उन बच्चों ने अपने घरों में रह के, उन अभिभावकों ने, अपने पिताओं, उनके पिताओं ने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चा भटके नहीं। और दूसरी बात, बच्चा जो मोबाइल का जो बोल रहे हैं कि भाई मोबाइल से पढ़ाई की जा सकती है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से आदमी मतलब बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो उसकी आंखें कमजोर होंगी या अन्य अन्य प्रभाव, अन्य प्रकार की बीमारियां वो लेके आएगा। बच्चों को अंदर के अंदर खेलना चाहिए, खेल खिलाना चाहिए, खिलवाना चाहिए अभिभावकों ने, और ऐसी व्यवस्था एक देनी चाहिए कि बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाए, क्योंकि क्या होता है घर में रह करके बोर हो जाता है, तो शिक्षा और खेल दोनों भी महत्वपूर्ण उस बच्चे के जीवन जीवन के लिए आवश्यक है, और ऐसी व्यवस्थाएं मोहल्लों में या उनके घरों में या अन्य जहाँ पर व्यवस्था हो सके करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहेगा वही वो समाज की ताकत है, वो देश की ताकत है, और हमें बच्चों के लिए भी करना चाहिए। और साथ में अभी तो हम इस विषय है, ये हमारा ही विषय है, युवा अवसर का विषय है, शिक्षा में हम काम करते हैं, पर वर्तमान समय में कोविड के कारण हम नहीं कर पा रहे, बाकी हम जैसा भी स्थिति संभलती है तो हम इस शिक्षा क्षेत्र में भी और तेजी से काम करेंगे।
जी सर, सर इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि शिक्षा विभाग ने बीते दिनों जो पहली लहर आई थी कोरोना की, तब मोहल्ला क्लास लगाई गई थी, लेकिन सर दूसरी ये लहर आई है उसके बाद इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। पिछले दिनों जो मोहल्ला क्लास लगाई जा रही थी उससे बच्चे घर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इस बार किस तरह की कोई पहल नजर नहीं आ रही है। सर किस तरीके देख रहे हैं?
मैं शिक्षा विभाग से जो मतलब पहल नहीं की जा रही है, तो वर्तमान को समय देखते हुए जिला पिछले महीनों से बहुत गलत स्थिति में गुजरा है, उन्हें मोहल्ला क्लास बंद की तो वो काफी मतलब सही था, और ये स्थिति जैसी संभलती है तो शिक्षा विभाग ने पुनः मोहल्ला क्लास प्रारंभ करना चाहिए और शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, प्रशासन प्रशासन जो व्यवस्था देता है या प्रशासन वो मतलब ध्यान रखते हुए काम करता है, तो वो जरूरी भी है कि मोहल्ला क्लास बंद कर दी तो मतलब सही था उस समय को देखते हुए मोहल्ला क्लास बंद कर दी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जैसी स्थिति संभलती है तो शिक्षा विभाग ने पुनः प्रारंभ करना चाहिए।
जी सर। सर वर्तमान में जो कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही थी उस दौरान यूथ ऑफ सर ने कई प्रयास किए हैं, जिसमें रक्तदान हो, प्लाज्मा डोनेट हो या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो, तो सर इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
यूथ ऑफ सौसर सामाजिक क्षेत्र में ही काम करता है, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए यूथ ऑफ सौसर हमेशा प्रयासरत रहेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य जो भी क्षेत्र जो समाज में समाज को विकास के सर्वांगीण विकास होता हो। और रही बात ब्लड डोनेट की, तो हमने ऐसा कमिटमेंट किया था शास्त्री सर को कि हम पूरे साल भर हर महीने कैंप लगाकर ब्लड डोनेट करेंगे, जिससे कि सिविल अस्पताल में जो ब्लड की कमी है वो दूर किया जा सके। हमें जो डिलीवरी में महिलाएं को आवश्यकता होती है, अन्य एक्सीडेंट में अन्य चीज़ों मतलब ब्लड की आवश्यकता होती है, उस पूर्ति के लिए हमने कमिटमेंट किया था शास्त्री सर से कि हम हर महीने ब्लड को डोनेट करेंगे। मतलब यूथ ऑफ सौसर ने ये कमिटमेंट किया था कि हर महीने कैंप लगाकर ब्लड को डोनेट करेंगे। अब इस महीने में दो थोड़ा एकदम से ज़्यादा खराब चल रहा था, इस कारण से हमने उस कैंप को नहीं लगाया है। बाकी जैसी स्थिति संभलती है हम, या फिर हम अभी भी प्रयासरत है, जिनको भी आवश्यकता होती है ब्लड की, प्लाज्मा की, हम बिल्कुल यूथ ऑफ सौसर तत्पर सेवा के लिए, हमेशा लोगों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर है। हमें चाहे ऑक्सीजन या ब्लड की कमी जहाँ पर भी होती है और हमें वहाँ से सूचित सूचना दी जाती है, सूचना मिलती है, तो यूथ ऑफ सौसर बिल्कुल उन सारे लोगों की सारे लोगों की जिनको आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है और रहेगा।
जी, तो ये थे भीमराव जी बड़वाई, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, आयुष्मान कार्ड हो या वर्तमान में सिविल अस्पतालों की स्थिति हो, साथ ही वर्तमान हालात कोरोना के किस तरीके से, इस पर मोबाइल वाणी पर राय साझा की। भीमराव जी मोबाइल वाले को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश।